ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, नवादा और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नीट यूजी परीक्षा 2024 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई। पेपर लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा। एससी एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान पर राजनीति हुई तेज। राजद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। और सीबीआई दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की हुई मौत के मामले की जांच करेगी। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, नवादा और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में अगले एक सप्ताह तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा।
पूरे बिहार में अगले 24 से 48 घंटों में वर्षा होने एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान। तापमान में कमी एवं व्यापक क्षेत्र में वर्षा होने के कारण किसानों के लिए लाभदायक होगा।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा के काशीचक में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई। पेपर लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा के आयोजन में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को छात्रों के हित में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कमियों को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा पीठ ने एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई समिति से नीट परीक्षा के लिए एसओपी तैयार करने को भी कहा। इस कमिटी से 30 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में शुचिता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने और इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सरकार के रुख की पुष्टि करती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और शून्य त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। इधर नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि परीक्षा पारदर्शी ढंग से हुई है।
देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मुहर लगाया।
इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई है, भले ही इसका दायरा दो शहरों तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय को पेपर लीक मामले पर ऐसा दिशा निर्देश देना चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।
सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत। और मुझे लगता है कि कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो, और नजीर साबित होनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत न करे।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला 1932 के पूना पैक्ट के खिलाफ है। श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के पक्ष में नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था, जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला।
इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर कहा कि वे संविधान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि श्री यादव संवैधानिक संस्थानों का सम्मान नहीं करते हैं।
तेजस्वी यादव जी संविधान विरोधी है, ये संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय को ये किस तरह से वरगला कर जनता को भरमाने का खेल खेलते हैं। ऐसे मानसिकता जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, वो संविधान विरोधी मानसिकता साफ झलक रही है। अरे हम तो हमेशा आरक्षण के समर्थन में रहे, लेकिन आप परिवारवाद के आरक्षण से कब मुक्त करेंगे पार्टी को? जो पार्टी के अंदर अपने परिवार के आरक्षण से मुक्ति नहीं दे सकता, वो समाज के आरक्षण की बात कैसे कर सकता है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हम समर्थक हैं। लालू प्रसाद जी बताए या कांग्रेस पार्टी ये बताए, उसने किसको आरक्षण दिया है? आज तक के लोकतंत्र में ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और ना लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण दिया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एससी और एसटी के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।
350 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कि जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा? बिना जाने बिना समझे जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो है, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है, लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया है। यह राष्ट्रपति के संचालन में राज्यपालों का पहला सम्मेलन है और सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती इलाकों के विकास का मुद्दा शामिल है। सीबीआई दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की हुई मौत के मामले की जांच करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण हादसा होने की आशंका जताई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच समझौता हो गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।
हमारा चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी, इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेगा।
कटिहार पुलिस ने मक्का किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि गिरोह के सरगना गौतम चौधरी और उसके एक सहयोगी कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 4,08,00,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद की गई है। वहीं विभिन्न बैंक खातों को सील कर दिया गया है। बैंक में लगभग 31,00,000 रुपए जमा मिले हैं। बेगूसराय जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज के पास से पुलिस ने सेना के एक जवान को 75 डेटोनेटर और 90 अन्य विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के एक आभूषण दुकान में पिछले दिनों करोड़ों रुपए के जेवरात लूट मामले में एसटीएफ ने पटना के शास्त्री नगर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में माली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला खैरा गांव से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नक्सली पर 3,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू फ्रेंडली कॉलोनी से केरल पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उस पर 1,25,00,000 रुपए ठगी का आरोप है। गिरफ्तार अपराधी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कागजी मोहल्ले में ताड़ का एक पेड़ टूटकर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों पर गिर गया। इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। सहरसा जिले के पत्थरघट थाना क्षेत्र के नवटोलिया में अपराधियों ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक को 10 गोलियां मारी गयी। शेखपुरा के जिला जज पवन कुमार पांडे ने आपराधिक मामलों में गवाही नहीं देने वाले स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव इस्तफा हुसैन सहित 4 अन्य आला अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किशनगंज जिले के महिनगांव पंचायत के यूएमएस मरवा टोली विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, नवादा और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नीट यूजी परीक्षा 2024 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई। पेपर लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा। एससी एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान पर राजनीति हुई तेज। राजद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। और सीबीआई दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की हुई मौत के मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।